कि दो छोटे बच्चों ने एक ही प्रकार की घटना का वर्णन किया हो कि मैं यहां पर था, मेरे माता पिता ऐसे हैं, देखो मेरी तो पत्नी जीवित है, मानो इस प्रकार की बात दो बच्चों ने बताया हो, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। हरदम हुआ तो केवल एक ही बच्चे ने इस प्रकार की घटना कही। तो जो ESP है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, तो वह केवल एक ही बच्चे तक सीमित क्यों रहेगा, वह दो बच्चों में क्यों नहीं आता है, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। तो यह जो हम कहते हैं कि हम कोई एक नाम दे देते हैं, परिभाषा दे देते हैं, तो नामकरण कोई स्पष्टीकरण नहीं होता कि हमने एक नाम दे दिया घटना को तो हम सोचें कि इस नाम से कोई स्पष्टीकरण मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर यह कहा गया कि जिसको इन्होंने कहा कि ESP है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, यह बात तो बिल्कुल भिन्न होती है, इस बात का कोई आधार भी नहीं है, और वे हमें समझा नहीं पाते कि यह घटना किस प्रकार से घटती है। तो हम कहते हैं फिर तुम्हें तो यह बाध्य होना ही पड़ेगा मानने के लिए। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं पुनर्जन्म के संबंध में, ये जो इस प्रकार की घटनाएं होती है केवल भारत में नहीं है, उन देशों में है जिन देशों ने कभी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया, जहां पर इस्लाम धर्म प्रचलित है, जहां पर ईसाई धर्म प्रचलित है, ऐसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, अरब में हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म के संबंध में बताया है। और इन घटनाओं की तो किताब ही पूरी बन गई है, भिन्न भिन्न स्थानों की ये घटनाएं हैं, चीन में घटी घटनाएं हैं, जापान में घटी घटनाएं हैं, फिलीपींस की घटनाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, अफ्रीका की हैं, अरब देशों की हैं, ईरान की हैं, इराक की है, रूस की है, जर्मनी की है, इंग्लैंड की है, इन भिन्न भिन्न देशों में ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। पहले हमें नहीं मालूम था, पर आजकल यह जो विज्ञान के कारण संसार सीमित हो गया है, छोटा हो गया है, तो कहीं पर ऐसी जो घटना घटती है तो तुरंत उसका पता चल जाता है, और वैज्ञानिक लोग उत्सुक हैं। वैसे तो वैज्ञानिक सचमुच का वह है जिसमें किसी प्रकार का पूर्व ग्रह ना हो, जो समझना चाहता है, जो सत्य को जानना चाहता है, किसी प्रकार के पूर्व ग्रह से परिचालित जो ना होता हो, वह सच्ची वैज्ञानिक है। और इसलिए ऐसे वैज्ञानिक सभी जगह हैं, जो ही ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं वे चले जाते हैं और उन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और देखते हैं कि बच्चे ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, सारी बातें हूबहू ठीक उतरती हैं। तो केवल भारत में नहीं, जहां पर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बल्कि ऐसे देशों में जहां पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को धर्म विरोधी माना जाता है, ऐसे देशों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो कहा कि प्रमाण देने का एक तरीका हो गया कि यह भी एक प्रमाण, पर एक सशक्त प्रमाण है पुनर्जन्म के लिए, यह एक सशक्त प्रमाण है कि जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि हाँ यह पुनर्जन्म होता है। अगर तुम पुनर्जन्म को नहीं मानते तो इसको तुम समझाओगे कैसे, यह जो बच्चा बता रहा है अपने पूर्व जन्म के संबंध में, इसका मतलब यह है कि यही वह आया है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अब वैज्ञानिक भले कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है यह प्रश्न दूसरा है, पर हो रहा है यह प्रथम बात है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं, इसलिए हमें मान तो लेना पड़ता है कि हाँ हाँ पुनर्जन्म हो सकता है। जब हो सकता है तो वह कैसे हुआ करता है, यह कैसे संभव होता है, हमने किस प्रकार से इसे माना है, इसे आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो हमने उस दिन कहा था, जो पिछली चर्चा इस पर की थी, वहां बहुत विस्तार से कहा था कि यह जो हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं उसके पीछे एक बहुत वैज्ञानिक भूमिका रही है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार रहा है और एक सामाजिक चिंतन भी रहा है। वह सामाजिक चिंतन क्या रहा है, हमने कहा था कि यदि हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को न माने तो जीवन में कितनी खामियां आ जाती हैं। जैसे हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते तो फिर अब यह एक मनुष्य बूढ़ा हो गया, हमारे घर में एक व्यक्ति है, हमारा पिता है, उस पिता ने हमें बचपन से पाला है, हमें बड़ा किया है, अपना पेट काट कर हमें पढ़ाया है, और उसके बाद धीरे धीरे हम नौकरी से लगते हैं, शादी ब्याह करते हैं, मौज में अपने दिन बिताते हैं, और फिर हमारा पिता बूढ़ा हो गया, अब हमारे घर में ही वह रहता है। मानो हमने बहुत दया करके अपने पिता को अपने घर में स्थान दे दिया है, और पिता वहां पर विद्यमान है, बूढ़ी माता विद्यमान है, जिस माता पिता ने हमको बड़ा करने के लिए सब कुछ किया, सब प्रकार का त्याग किया, अब वही बूढ़े माता पिता हमारे लिए भार हो जाते हैं। यह जो हम पश्चिमी संस्कृति में और एक भौतिकवादी संस्कृति में अपने आप को पा रहे हैं, तो हमारे लिए बूढ़े माता पिता भार स्वरूप हो गए। तब फिर यदि हम इस पर विश्वास न करें पुनर्जन्म के सिद्धांत को, एक चिंतन यह भी चल सकता है कि आज ये तो बूढ़े हो गए हैं, जीवन में तो किसी प्रकार का कोई लक्ष्य है ही नहीं, मनुष्य के जीवन में कोई प्रयोजन नहीं, तो फिर क्या करो, अब तो ये किसी काम के नहीं है। जब तक हमारी माता कुछ काम कर सकती थी, हाथ पर चला सकती थी, मेरे मुन्ने को खिला सकती थी, तब तक मुझे लगता था कि चलो एक नौकरानी का काम तो मेरी माँ कर देती है, मुझे एक आया तो नहीं रखना पड़ता है, तो मेरी माँ यह काम कर देती है, तब तक तो मैं माँ से संतुष्ट हूँ। और माँ यदि बीमार पड़ गई, खाट पर पड़ी रहती है, तब तो फिर ऐसा सिद्धांत स्थिर कर लेना चाहिए, अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी हत्या कर देनी चाहिए, इसको जहर देकर के मार दो, क्योंकि यही जीवन तो सब कुछ है। जब यही जीवन सब कुछ है तो ये सब अनुपयोगी हैं, और जो अनुपयोगी हैं उनको हमें नष्ट कर देना चाहिए। यही तो सिद्धांत है, आजकल हम यही सिद्धांत कर रहे हैं कि अनुपयोगी जो है उसको हम नष्ट कर दें। जैसे जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसका दूध पी लें, जब गाय दूध देने में समर्थ तो नहीं है तो उसे बूचर खाने में भेज दें और उसका कत्ल हम करा दें। तात्पर्य यह है कि ऐसा सिद्धांत हमें कहां पर ले जाएगा, फिर तो बस सभी जगह ले जा सकता है कि जो हमारा अब बेटा है अब ऐसा पैदा हो गया, डिफॉर्म पैदा हो गया, मालूम नहीं अब उसे पोलियो हो गया, न चल फिर सकता है, उसे उठाना पड़ता है, 18-20 साल का हो गया है तो उठाओ तो वह उसको मलमूत्र के लिए उठा करके ले जाओ, अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता, तो फिर एक ऐसा ही सिद्धांत जीवन में आएगा कि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको खत्म कर दो, जो बूढ़े बूढ़िया हैं उनको खत्म कर दो। यह कैसा सिद्धांत है, आखिर मनुष्य यहीं पर तो आ रहा है, मन में शायद यह विचार भी तो कर सकता है कि भले ही वह न कह पाता हो कि लोग क्या कहेंगे, परंतु मन में शायद ऐसा पोषण करता हो कि अजी ये सब बूढ़े और बूढ़िया है, खाली खांसते रहते हैं दिन भर, कोई काम तो करते नहीं है और बस इनको खिलाना भर पड़ता है, यहाँ तो जी जहान से हम तो भर गए हैं और भगवान उनको उठाता भी नहीं है, ले भी नहीं जाता, इसका मतलब कि हम उनको जहर नहीं दे रहे हैं, पर भगवान अगर किसी प्रकार जहर दे दे तो अच्छा है, टूट जाए या कलंक ही निकल जाए, यह हमारी मनोवृत्ति हो गई। आखिर यह मनोवृत्ति हमें कहां ले जाएगी, यह बताता है कि हम कितने भौतिकवादी, कितने स्वार्थ पर बन गए हैं। तो मैं यह कह रहा था यह सब देन है, हम जब यह मानते हैं कि जीवन बस इतना सा ही है जो है, और जो यह मानते हैं कि यह जीवन केवल इतना सा ही है, उनके लिए सचमुच रोकने के लिए तो कुछ नहीं है, वे तो यही सिद्धांत रख सकते हैं कि सब जितने भी बूढ़े बूढ़ी हैं उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, इनको खत्म कर देना चाहिए। पर हमारे यहां दूसरा माना गया, हमने यह माना कि भले हम शरीर से जर्जर हो गए, हम हाथ पैर चला नहीं सकते, परंतु फिर भी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अब भी प्रयत्न कर सकते हैं। यह नहीं माना कि मनुष्य हाथ पैर से जर्जर हो गया, वह बेकाम हो गया, अब वह कुछ नहीं कर सकता है। हमने यह कि हम यदि जर्जर भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, खाद भी हमने पकड़ ली, पर हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर का मनन कर सकते हैं, हमारी साधना चल सकती है और उस साधना के सहारे हम अपने को उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा ले सकते हैं, यह हमने माना है। और इस प्रकार ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है जीवन में उपयोगिता भी देता है। यदि उपयोगितावाद की ही दृष्टि से देखें, यदि संसार को देखें जिसे हम कहेंगे कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से, यूटिलिटेरियन अप्रोच से, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से, तब भी कहेंगे कि यह एक बहुत बड़ा उपयोगितावादी सिद्धांत है यह पुनर्जन्म का, जो यह बताता है कि कोई मनुष्य फालतू नहीं है, कोई व्यक्ति फालतू नहीं है, और व्यक्ति यदि चाहे तो अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए वह चेष्टा कर सकता है। और जैसे हम पड़े हैं, खाट में पड़े हैं, हमें लकवा मार गया है, पड़े हुए हैं, पर लकवा मारे हुई दशा में भी हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, उनको पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उनको पाने की हमारी साधना चल सकती है, यह यहां पर माना है। तो ये तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सारी बातें हुई। तो हम क्या कह रहे थे कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हमने बहुत पहले से माना है। माना है माने कैसे माना है, परीक्षण के द्वारा, केवल विश्वास के सहारे नहीं, परीक्षण के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, इस पर परीक्षण किए गए, तर्क किया गया, विचार किए गए, और विचार और तर्क और परीक्षणों से इसे संगत पाया गया। और फिर कई मनुष्यों ने इस प्रकार के दर्शन किए, उन्होंने अपने जीवन में दर्शन किए, उन्होंने देख लिया अपनी पिछली परंपराओं को, जीवन की परंपराओं को, यह भी उन्होंने देख लिया, यह भी हमने पिछली बार कहा था। तो हम यह कह रहे हैं कि जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं तो यह जीवन का लक्ष्य आता है। यदि जीवन के लक्ष्य को स्वीकार न करें तब तो पुनर्जन्म का सिद्धांत तो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। यह खड़ा होता है जीवन के लक्ष्य को मानने पर, जीवन का एक प्रयोजन मानने पर। यदि हम जीवन का प्रयोजन माने तब सारी बातें सुलझ जाती हैं कि यह जो हमें जन्म की परंपरा मिली, हम क्रमागत भिन्न भिन्न प्रकार का जन्म ग्रहण करते हैं, यह जो हमें परंपरा मिली है, यह परंपरा किसके लिए मिली है? उस लक्ष्य को पाने के लिए। हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे हो पर हम सक्षम कदमों से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह लक्ष्य है। वह लक्ष्य क्या है? तो इस पर थोड़ा सा चिंतन करें कि लक्ष्य क्या है। क्या सचमुच हमारे जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य है या जीवन बिल्कुल ही लक्ष्यहीन है? इस प्रश्न पर चिंतन करना आवश्यक हो जाता है। तो हमने पहले कहा था कि पहले हमारे यहाँ यह माना जाता था, कुछ लोग मान लेते थे कि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, परंतु हमारे बहुत से ऋषियों मुनियों ने ऐसा नहीं माना। विज्ञान के क्षेत्र में भले यह स्वीकार किया गया पहले इस जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है, पर आज ऐसा नहीं है। आज तो विज्ञान जीवन में एक लक्ष्य को मानने के लिए बाध्य हो रहा है। पिछली बार हमने डार्विन का संकेत किया था। डार्विन है विकासवाद के जनक, एक विकासवाद की परंपरा है विज्ञान के क्षेत्र में। उसका क्या मतलब है कि डार्विन ने समझना चाहा था यह जीवन की प्रक्रिया क्या है, यह जो हम देखते हैं कितने प्रकार के प्राणी हैं, कितनी योनियां हैं। तो उन्होंने इस जीवन की परंपरा को समझने का प्रयास किया और यह कहें कि यही ये ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन को समझने का प्रयास किया, या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने संबद्ध किया विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। तो इन्होंने किस प्रकार किया? उन्होंने परीक्षणों से देखा। यह एक अद्भुत बात उन्होंने देखी कि एक जीवन की परंपरा शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? उन्होंने उसका नाम दिया अमीबा। अमीबा कहते हैं जीवाणु कोश को, यह जीवाणु कोश है जहां से उन्होंने जीवन को देखा। यह जीवन का प्रारंभ होता है अमीबा से। और फिर क्या देखा उन्होंने? अपने अध्ययनों के बल पर, विश्लेषणों के बल पर यह पाया कि अमीबा से जीवन का प्रवाह शुरू होता है और फिर वह कई योनियों में से जाता है, स्पीसीज में से जाता है, और योनियों में से जाकर के वह धीरे धीरे इसी प्रकार तक चला 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 फिर मनुष्य योनि तक आता है। उन्होंने यहां तक अध्ययन तो किया और फिर उसके बाद कई सवाल पैदा हो गए। सवाल ऐसे पैदा हुए कि जब इस प्रकार यह जीवन की परंपरा उन्होंने पढ़ी तो उनके सामने कुछ सवाल रखे गए। ऐसा समझ लीजिए एक वेदांती विकासवादी से बातचीत कर रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है। वेदांत अपना तत्व ज्ञान है, वेदांत पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और वह पुनर्जन्म पर खड़ा है, और यह जो विकासवादी है उसने तो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को समझने किया है। तो अब इन दोनों में वार्तालाप हो रहा है, ऐसी हम कल्पना करें। तो विकासवादी कहता है कि देखो मैंने जीवन को समझने का प्रयास किया है। तो वेदांती पूछता है तो तुमने क्या समझा है? हमने यही समझा है कि यह जो जीवन का प्रारंभ है वह अमीबा से होता है और अमीबा से होकर के वह कई योनियों में से गुजरता है। एक योनि में आया, निम्नतर स्पीसीज में आया, लोअर स्पीसीज में आया, वहां से वह जीवन का प्रवाह उच्चतर स्पीसीज में जाता है, फिर उससे उच्च स्पीसीज में जाता है, फिर उससे उच्च योनि में जाता है, और इस प्रकार जाता जाता वह मनुष्य तक आता है। अच्छा, वेदांति ने कहा कि फिर मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूं। पूछो। तो कहा उसने, वेदांती ने कहा कि अच्छा आपने यह जो माना है तो आप यह बताइए कि यह जो जीवन का प्रवाह आप कहते हैं अमीबा से चलता है और बहुत सी योनियों में से गुजर करके मनुष्य तक आता है, तो उसका लक्ष्य क्या है? यह प्रवाह कहां जाएगा? कहा विकासवादी ने कि उसके लक्ष्य के संबंध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, यह जो आप कह रहे हैं कि मनुष्य तक आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? यदि आप लक्ष्य नहीं बता सकते तो इतना ही बता दीजिए कि मनुष्य तक आने के बाद क्या होगा। तो विकासवादी ने कहा कि नहीं, बस इतना ही मैं जानता हूँ, इसी प्रकार वह चलता रहेगा, इससे अधिक मैं नहीं जानता हूँ, यह प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा। अच्छा विकासवादी जी, वेदांती ने पूछा, आप यह तो बताइए कि आप कहते हैं कि अमीबा से निम्नतर योनि में, फिर उससे उच्चतर योनि में यह विकास का प्रवाह जाता है, यह जीवन का प्रवाह बहता है, तो यह बताइए इस प्रवाह के बहने का क्या कारण है। तो विकासवादी ने कहा कि इसके दो कारण मैं मानता हूं। एक कारण है, उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और दूसरा कारण है सेक्सुअल और नेचुरल सिलेक्शन। ये दो कारण मैं मानता हूं। पहला कारण है, उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बलिष्ठ है वह जीवन में बना रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूछे कि यह जो प्रवाह है कहां तक जाएगा, जब तक मनुष्य योनि तक ना आ जाए। अच्छा, मनुष्य योनि तक आने के बाद क्या होगा? तो डार्विन महोदय के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह तो प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा। जब पूछा गया कि इसमें कोई आप लक्ष्य मानते हैं क्या, कि यदि जीवन का प्रवाह है तो कहीं पर एक लक्ष्य की ओर जा रहा है, तो यदि आप ऐसा मानते हैं कि जीवन का प्रवाह किसी लक्ष्य तक जा रहा है, तो वह लक्ष्य क्या है? तो डार्विन इस संबंध में मौन है। उनकी किताब में जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है, उस पुस्तक में हम देखेंगे इसका कोई उत्तर नहीं है कि यह जो जीवन का प्रवाह बहता है उसका कोई लक्ष्य है, कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहा है। पर यहां पर जिसे हम कहेंगे कि हिंदू धर्म के जितने शास्त्र रहे, या हिंदू धर्म के जो सिद्धांत रहे, या वेदांत जो ग्रंथ रहा, वेदांत का जो तत्व ज्ञान रहा, तो भारतीय तत्व ज्ञान ने जीवन का एक लक्ष्य माना है, और जीवन का लक्ष्य मान करके फिर इस जीवन को समझाने का प्रयास किया है। अब भारतीय तत्वज्ञानी यह नहीं कहता कि जीवन निरुद्देश्य है, वह मानता है कि जीवन में एक उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जीवन का जो प्रवाह है वह सतत बह रहा है। और क्या उद्देश्य है? हमारे भीतर में पूर्णता छिपी है, उस छिपी हुई पूर्णता को हम प्रकट करना चाहते हैं। यह वेदांत का तत्वज्ञान कहता है, भारतीय तत्वज्ञान कहता है कि हमारे भीतर में तत्वज्ञान वह जो पूर्णता है वह छिपी हुई है, और उस छिपी पूर्णता को हम प्रकट करना चाहते हैं। अब इसे कैसे समझें? समझ लीजिए, हम विकासवादी से कुछ प्रश्न करते हैं और विकासवादी उन प्रश्नों का उत्तर देता है, और फिर उसके बाद हम आएंगे और उसको हम तत्वज्ञानी से या दार्शनिक से इस प्रश्न को करेंगे, और वेदांत की दृष्टि से इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। अब जैसे विकासवादी से पूछा गया, अच्छा जीवन का लक्ष्य आप कुछ मानते हैं? नहीं मानते। या जीवन का प्रवाह कहां तक जाता रहेगा? तो कहा वह तो मनुष्य योनि तक आया, फिर तो वह किसी प्रकार चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। अच्छा, उससे तीसरा प्रश्न पूछा गया, अच्छा विकासवादी जी एक बात और बताइए, यह जो कॉन्शियसनेस दिखाई देता है, तो यह जो चैतन्य दिखाई देता है विकास के क्रम में, तो यह कॉन्शियसनेस कैसे प्रकट होता है, कहां पर से आता है? तो विकासवादी कहता है कि देखो, इवोल्यूशन प्रोसेस में विकास के क्रम में कहीं पर कुछ रसायन आपस में एक साथ संघटित हो जाते हैं, और एक साथ संघटित होने के कारण चैतन्य प्रकट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या आप यह मानते हैं, जो पूछता है दार्शनिक, आपका यह मानते हैं कि यह जो चैतन्य है वह अचानक प्रकट हो गया? तो कहता है विकासवादी, कहता हाँ, यह जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वह अचानक प्रकट हो जाता है। अच्छा, यह जो प्रकट हुआ वह कहां से प्रकट हुआ? तो विकासवादी कहता है कि कहां से प्रकट हुआ, यह तो विकास के क्रम में प्रकट हुआ। कुछ रसायन एक साथ मिलते हैं, अब आपस में मिलने से यह चैतन्य प्रकट हुआ। अब तुम कहते हो कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, अब इतनी बात तो हमें नहीं मालूम है। अच्छा, वह नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अच्छा, एक और यह बता दीजिए कि आप इसकी क्या परिभाषा करेंगे? विकासवादी से दार्शनिक पूछ रहा है कि जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े लोग इस जीवन में देखे जाते हैं, कुछ बड़े जिनको हम महापुरुष कहते हैं, छोटी के पुरुष, जैसे कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, ईसा मसीह हो गए, ये सब बड़े बड़े महापुरुष जो देखे जाते हैं, तो ये विकास के क्रम में जो प्रकट होते हैं, तो कैसे प्रकट होते हैं? क्या ये भी विकास के क्रम में से जाकर प्रकट होते हैं? तो कहा उसने, हाँ वह तो यही साफ दिखाई देता है कि विकास के क्रम में ये प्रकट होते हैं। तो अच्छा, यह तो बताइए कि यदि इतनी पूर्णता इनके जीवन में दिखाई देती है, इतना परफेक्शन दिखाई देता है, जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, जैसे ईसा हो गए, बुद्ध हो गए, अपने जमाने में श्री राम कृष्ण हो गए, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हो गए हैं, जो दिखाई देते हैं कि वे पूर्णता प्राप्त हैं और सामान्य से बहुत परे हैं, ये किस क्रम से कैसे निकलते हैं, इसकी कोई व्याख्या आप कर सकते हैं? तो विकासवादी कहता है कि इसकी तो कोई व्याख्या हम नहीं कर सकते, यह तो हमें नहीं पता कि ये कैसे निकलते हैं। अच्छा, तो अब उससे पूछा जाए विकासवादी से कि अच्छा, आप जो मानते हैं कि एक योनि से उच्चतर योनि में विकास का क्रम जाता है, ठीक है, आप दो कारण बता देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सेक्सुअल सिलेक्शन, तो हम आपसे यह पूछते हैं कि इस प्रकार कितनी स्पीसीज आप मानते हैं, कितनी योनियों में से होकर के जीवन का प्रवाह जाता है। तो आज का जीव शास्त्री कहेगा कि 128 लाख योनियों में से होकर के जीव का प्रवाह जाता है। या वह कहेगा आज का जीव शास्त्री 128 लाख स्पीसीज मानता है। जब मैंने पहली बार यह पढ़ा तब आप समझ सकते हैं मुझे बहुत रोमांच हो आया। रोमांच इसलिए हुआया कि सामान्य ढंग से हम लोग 84 लाख योनियां कहते रहे हैं। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि यह जीव 84 लाख योनियों में से गुजरता है, उसके बाद वह मनुष्य होता है, आकर लक्ष्य जहाँ पर कहा गया है जीव 84, आकर जीव लक्ष्य 84, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देही। जहाँ पर यह कहा गया देत ईत बिनु हेतु सनेही, अब यह भक्ति की भाषा है। पर यहाँ पर यह माना गया कि यह जीव 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मनुष्य योनि में आता है। तो यह जब हम पढ़ते थे तब तो हंसी आती थी, हम कहते थे कि यह कैसा अंधविश्वास है, किसने देखा है, किसने गिना है कि 84 लाख योनियों में से जीव जाता है, तो इन योनियों को गिनने वाला कौन रहा है। पर यह तो हम तब कहते थे, पर जीव शास्त्री की जब बात पढ़ी कि 128 लाख स्पीसीज में से होकर के जीवन का प्रवाह जाता है, तब हमने कुछ भी कहना बंद कर दिया। तब हमने नहीं पूछा कि उसने किससे देखा, किस यंत्र से देखा, किससे मापा। तो यह जो अंतर दिखाई देता है कि वे कहते हैं 128 लाख योनि, यहाँ पर धर्मशास्त्र कहता है 84 लाख योनि। यह जो अंतर दिखाई देता है, तो अंतर के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि आजकल जो आधुनिकतम यंत्र है देखने के, इनमें कितना परिष्करण हुआ है, ये कितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हुए हैं, और जो पुराने यंत्र थे वो पुराने यंत्र इतने सूक्ष्म ना हो। और दूसरा कारण हो सकता है गणना के तरीके में, कि एक गणना जिसको शायद भारतीय तत्वज्ञानियों ने एक योनि मानी, उसको वैज्ञानिकों ने दो योनि मान ली हो, ऐसे होते हैं। जहां पर हमने केवल एक स्पीसीज में पकड़ा है, उसे उन्होंने दूसरी स्पीसीज में पकड़ा हो। तो यह गणना का तरीका होता है, तो यह जो गणना का तरीका है उसके कारण भी यह अंतर आ सकता है। तो जो हो, तो ये बातें हमारे समक्ष आती हैं। अब तो इतनी बातें मैं समझा नहीं सका, तो विकासवादी से यह कहता है, यह जो कह रहा है तत्वज्ञानी, कि भाई तुम तो विज्ञान की दृष्टि से भी ठीक बात नहीं कहते। विकासवादी ने कहा कि मैं कौन सी बात ठीक नहीं कहता। कहा कि यह देखो, तुम कहते हो अमीबा से जीवन का क्रम शुरू होता है और इसी प्रकार वह अनंत काल तक चलता रहेगा, और तुम्हें स्वयं नहीं मालूम कि वह कहां तक जाएगा। परंतु देखो, एक गणित का सिद्धांत है, और गणित का सिद्धांत ऐसा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली बिकम्स ए सर्कल, एक सरल रेखा को अनंत दूरी तक फैला दो तो वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है। अब तुम कहते हो अनंत काल तक जीवन का क्रम चलेगा या प्रवाह बहता रहेगा, तो इसमें तो कोई तथ्य नहीं मालूम पड़ता। तुम्हारे विज्ञान की दृष्टि से ही देखो कि यह जो कहा गया है कि एक सरल रेखा को अनंत फैलाओ तो वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है, तो इस दृष्टि से तो हम तो यह कहेंगे कि यह जो गति हो रही है, यह जो जीवन का प्रवाह बह रहा है, तो हम यह मानेंगे कि जीवन का प्रवाह एक वृत्त को पूर्ण करता है, एक बिंदु से शुरू होता है और वह सब कुछ पूर्ण करने के बाद फिर से उस वृत्त को पूर्ण कर लेता है, हम तो ऐसा मानेंगे। अच्छा, और दूसरी गलती कहां पर हो गई, विकासवादी पूछता है। तो यह कहता है जो तत्वज्ञानी है कि देखो, तुमने यह तो नहीं बताया कि वह, तुमने इतनी बात तो बता दी कि अमीबा के भीतर से विकास का क्रम शुरू होता है, पर तुम्हारे विज्ञान में तो यह भी है, ईच इवोल्यूशन प्री सपोजेज एन इन्वोल्यूशन, जैसे इवोल्यूशन हमने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्वोल्यूशन हम प्री सपोज कर लेते हैं। विकास कहने से ही संकोच का बोध होता है, जन्म कहने से ही मृत्यु का बोध होता है। तो यदि हम कहते हैं कि अमीबा के भीतर से विकास हो रहा है, तो तुम यह बताओ कि अमीबा के भीतर वह क्या है, वह क्या संकुचित हो गया है जिसका विकास हो रहा है। इसके संबंध में भी विकासवादी मौन है, वह कुछ बता नहीं पाता। तो तत्वज्ञानी कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मानता हूं कि अमीबा के भीतर से विकास का क्रम शुरू हो रहा है, पर मैं तुमसे यह पूछता हूं कि जब तुम विकास की बात कहते हो तब तुम्हें संकोच की बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी, और मैं तो तुमसे यही पूछता था कि इसके भीतर में क्या है संकुचित, इन्वॉल्व क्या है जिसका यह विकास हो रहा है। तो वह जो है
जिसे हम कहेंगे विकासवादी, वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। और तब विकासवादी कहता है तत्वज्ञानी से, क्या तुम ही इस सब का उत्तर दे सकते हो जो प्रश्न तुमने मेरे समक्ष किए, तो इन प्रश्नों का उत्तर तुम मुझे दे सकते हो। तो तत्वज्ञानी कहता है मैं दे सकता हूँ। बेटा अच्छी बात, तुम ही उत्तर दो। तो इस पर फिर यह कहता है तत्वज्ञानी, यह कहता है कि देखो हम लोग एक जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तुम तो नहीं मानते, पर हम लोग जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं। अच्छा, तुम जो कहते हो कि जो प्रवाह है जीवन का प्रवाह अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार नहीं मानते कि अनंत काल तक निरुद्देश्य बहता रहेगा। हम यह मानते हैं कि जीवन का प्रवाह एक उद्देश्य को पाने के लिए बह रहा है, और जब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तब समझ लो कि वह वृत्त को पूर्ण कर लेता है, बस उसके बाद गति समाप्त, उसके बाद कोई गति नहीं। कहा विकासवादी ने कि तुम अपनी बातों को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाओ, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी यह बात तो स्पष्ट है नहीं। अच्छा तुम यह बताओ कि तुमने तो हमसे कह दिया कि यह जो तुम मानते हो कॉन्शियसनेस बीच में प्रकट हो जाता है, चैतन्य बीच में आकस्मिक रूप से प्रकट हो जाता है, तो तुम कहते हो कि इसमें आकस्मिकता है, तो तुम ही बताओ कि चैतन्य कैसे प्रकट होता है। फिर तुमने यह भी कहा कि एक इतना बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो इसके संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं। तत्वज्ञानी कहता है वही सब मैं बता रहा हूं, मैं सारी बातें आपके समक्ष रखता हूं। तत्वज्ञानी कहता है ये सारी बातें मैं बताऊंगा, और वह कह रहा है कि यह जो मैंने पूछा था आपसे, आप उत्तर नहीं दे सके थे कि अमीबा के भीतर में संकुचित क्या है जिसका विकास होता है, आप उत्तर नहीं दे पाए थे, पर मैं उत्तर देता हूं। देखिए आप एक बुद्ध को देखते हैं पूर्ण विकसित मानव के रूप में, आप कृष्ण को देखते हैं, चैतन्य को देखते हैं, श्री राम को देखते हैं, आप रामकृष्ण को देखते हैं, यह जो पूर्ण विकसित मनुष्य है, पूर्णता प्राप्त व्यक्ति है, यह सारा का सारा बीज के रूप में उस अमीबा के भीतर में संकुचित था। और यह जो चैतन्य आप कहते हैं बीच में आकस्मिक रूप से प्रकट हो गया कुछ रसायनों के मिल जाने से, तो हम नहीं मानते, क्योंकि विज्ञान ही कहता है कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यह जो चैतन्य वह शून्य से तो नहीं आ सकता, वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रच्छन्न था, छिपा हुआ था, जो समय पाकर के प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चैतन्य अचानक पैदा नहीं होता, चैतन्य पहले से कहीं पर छिपा हुआ है, और छिपा हुआ चैतन्य ही प्रकट हो जाता है। आप कहते हैं चैतन्य पैदा हो जाता है, यह गलत बात है कि कुछ रसायन एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलने से चैतन्य पैदा हो गया, इस पैदा होने को हम नहीं मानते। वह जो कॉन्शियसनेस से चैतन्य है उस अमीबा के भीतर में ही छिपा हुआ है, और इसी का विकास होता है, धीरे धीरे इसी का विकास होता है, और विकास के क्रम में ये सारी बातें आती हैं। और आप जो कहते हैं कि निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में विकास का प्रवाह बहता है, इसे तो हम भी मानते हैं, हम भी इसे स्वीकार करते हैं, पर हम यह कहते हैं कि यह जो कारण है, कारण आपने जो बताया, उस कारण को हम नहीं मानते। तो विकासवादी पूछता है फिर कौन सा कारण आप मानते हैं। तो तत्वज्ञानी कहता है कि हमारे यहां पतंजलि ऋषि हो गए हैं, पतंजलि ऋषि ने योग सूत्रों में लिखा है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, जात्यंतर एक जाति से दूसरी जाति में यह जो प्रवाह बहता है जीवन का, तो कैसे बहता है, प्रकृति की आपूरण क्रिया के द्वारा, यह उनका सूत्र है। अब इस सूत्र की तो विशद व्याख्या है, हम तो बहुत भागते हुए से इस प्रसंग को ले रहे हैं, तो इसलिए कि विज्ञान की दृष्टि से भी थोड़ा इसे देखने में आनंद आ जाए। तो यहां पर जो कहते हैं पतंजलि ऋषि, वे कहते हैं कि निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में जीवन का प्रवाह जाता है, पर प्रवाह जाने का कारण क्या है, प्रकृति की आपूरण क्रिया। इसका क्या मतलब है कि प्रकृति की आपूरण क्रिया का क्या मतलब, कि यह प्रकृति के स्वभाव में है, प्रकृति अपने को विकसित करना चाहती है, प्रकृति का स्वभाव है विकास को प्राप्त होना, इसलिए अमीबा क्योंकि प्रकृति का अंग है, वह स्वभाव है उसका विकसित होना, उसके भीतर में जो पूर्णता छिपी है, जो पूर्णता बाद में चल करके कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, चैतन्य के रूप में, बुद्ध के रूप में, ईसा के रूप में, रामकृष्ण के रूप में प्रकट होता है, तो वह सारा का सारा वह जो चैतन्य है वह उसके भीतर में छिपा हुआ है, वह सारी पूर्णता अमीबा के भीतर में छिपी है, और यह पूर्णता अपने को प्रकट करने का प्रयास कर रही है। और प्रकृति की आपूरण क्रिया का क्या मतलब, जैसे पानी है, अब पानी ही, पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे की ओर बहना। तो इसलिए पतंजलि ऋषि प्रकृति की आपूरण क्रिया को समझाते हुए कहते हैं, जैसे एक किसान